ओम शांति। तो बाबा के साथ आनंद ले रहे हैं सभी मधुबन में। मधुबन मतलब बाबा, और जहां बाबा हैं मधुबन है, आनंद है ना। यहां माया की तो एंट्री नहीं है ना, या है? और जहां माया नहीं है वहां आनंद है, राइट? बाबा का एक बहुत प्यारा सा महावाक्य है कि यदि आसक्ति है तो माया आ सकती है। और यहां तो आसक्ति या किसी भी प्रकार की अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं है ना। आज एक विशेष दिन है ना? है विशेष दिन? तो विशेष दिन है तो कुछ विशेष चर्चा भी होनी चाहिए, कुछ विशेष मुलाकात हो हा? तो बारह 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 आपने कहा है। एक कविता भी मेरे पास आ गई है कि अंत में सुनाया जाए। तो बारह 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 में क्या करेंगे? आपकी खुशी, मेरी शुभकामनाएं ये कि आपकी खुशी बारह गुनी बढ़ जाए और आपके गम बारह गुना कम हो जाए। आप बारह गुना बाबा के नजदीक पहुंच जाएं और बारह कोस माया से दूर हो जाएं, ठीक है ना? बारह गुना अपनी संपूर्णता के नजदीक और बारह कोस अपनी कमी कमजोरियों से दूर, तभी तो बारह 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 सफल होगा ना। हमारे लिए बारह ये ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं बाबा की ओर से और सब मधुबन निवासियों की ओर से भी आप सबके लिए आज की तारीख में बारह सौगातें लाया हूं। जब भी मिलते हैं तो कुछ सौगात तो होनी चाहिए ना? नहीं तो जहां जो यहां उपस्थित हैं उनको भी ये बारह सौगातें मिलेंगी, और जो नहीं हैं अपने शयन कक्ष में पहुंच चुके हैं वो भी अपने स्पीकर के साथ बने रहें ताकि क्लास के अंत में उन्हें ये बारह सौगातें मिलें, ठीक है ना? हमारे लिए तो हर चीज, हर दिन वैसे विशेष दिन है, लेकिन आज दुनियावी रूप से चूंकि एक विशेष दिन है इसलिए बारह आपको याद रहे, इसलिए बारह सौगातें आपके लिए लेकर के आए हैं। बाबा के मिलन का दिन नजदीक आ रहा है और साथ ही नया वर्ष भी नजदीक आ रहा है, तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? नए साल की तैयारी कैसी है? नया साल आएगा ना? आएगा 21 दिसंबर को? कुछ होने वाला नहीं है? आप तो निश्चिंत है ना? दुनिया वाले परेशान है कि 21 दिसंबर को क्या होगा। लोग कहते हैं माया कैलेंडर खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं ठीक बात है, माया कैलेंडर खत्म हो जाएगा और देवताओं का कैलेंडर शुरू होगा, ठीक है ना? तो अब तो देवताओं का कैलेंडर शुरू होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वैसे नासा ने भी ये कहा है कि 22, 23, 24 जो दिसंबर है इसमें पूरी दुनिया में ब्लैकआउट हो जाएगा। ब्लैकआउट होने का अर्थ होता है कि पूरी तरफ अंधेरा छा जाएगा, ऐसी उनकी मान्यता है, ऐसी कुछ गणनाएं हैं। एक जगह मैं भी गया था पब्लिक प्रोग्राम में, एक साइंटिस्ट से मुलाकात हुई तो वो भी इस बात को कह रहे थे कि इस वर्ष दिसंबर में जो अंतिम सप्ताह है उसमें कुछ ऐसी खगोलीय घटनाएं घटेंगी, ऐसी हमारी गणना कह रही है कि कई सौर मंडल के सूर्य एक एक जो लाइन है उसमें आ जाएंगे। और यदि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा हमारी पृथ्वी जो अभी घूम रही है वो खड़ी हो जाएगी, और खड़ी ही नहीं होगी लेकिन उल्टी घूमनी शुरू हो जाएगी। और आप सोच सकते हैं यदि उल्टी घूमनी शुरू हो जाए पृथ्वी, आपको कोई उल्टा घुमा दे तो क्या हालत होती है, हा? उन्होंने कहा खुदा ना खास्ता यदि ऐसा हो गया तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस संसार का क्या होगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि इतनी बड़ी घटनाएं, इतनी बड़ी विनाश की जो घटनाएं जो लोग कह रहे हैं वो अभी नहीं होंगी, होंगी जरूर लेकिन इतने व्यापक स्तर पर अभी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी अभी? अभी संपूर्ण हम नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे माता जी? मतलब हम बनेंगे उसके बाद ये सब घटनाएं होंगी, ऐसे क्यों नहीं होंगी? क्यों नहीं होंगी? क्यों नहीं होंगी? कुछ कारण तो है ना। हम जानते हैं कि संसार में जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, विज्ञान भी ऐसी ऐसी जो संभावनाएं व्यक्त कर रहा है, फिलहाल वो नहीं होंगी, इतने बड़े स्तर पे नहीं होंगी। संभव है कुछ ना कुछ हो, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं होंगी कि चारों तरफ हाहाकार हो जाए। क्यों ऐसा है? क्यों नहीं होंगे? तो कोई तो चाहिए, तो कहां है जो चाहिए? वो लोग कहां हैं? धरती पर तो हैं, कर क्या रहे हैं? प्रश्न तो ये है ना। वास्तव में बाबा ने कहा है, आप लोगों ने सही उत्तर दिया। बाबा ने कहा है, तुम सब ही विनाश की सुइयां हो, और जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते, जब तक तुम संपन्न और संपूर्ण नहीं बन जाते, तब तक इतनी व्यापक स्तर पर ये चीजें नहीं होंगी। और दूसरी बात जो बाबा ने कही हुई है, बाबा के महावाक्य हैं, कि जब सारी दुनिया के मन से ये बात निकल जाएगी कि विनाश होगा, तब जाकर के अचानक विनाश होगा। लोगों के मन चित से जब ये बातें निकल जाएंगी, बार बार सुन के, वो कहते हैं ना, शेर आया शेर आया शेर आया। अब ये सारी मीडिया वाले भी यही शेर आया ही कर रहे हैं कि विनाश होगा विनाश होगा विनाश होगा। और जब नहीं होगी ये सब घटनाएं, तो लोगों के मन में ये बात आ जाएगी कि नहीं, कुछ होने वाला नहीं है इस संसार का, तब ये अचानक होंगी। लेकिन हमें उस समय के लिए तैयार तो अपने आप को करना ही है ना। तो विनाश की बातें तो अलग, इसीलिए हम नए वर्ष के लिए अपने आप को तैयार करें। मधुबन में आप सभी हैं, बहुत सुंदर अवसर आप लोगों के पास है। मैं तो इसे सौभाग्य मानता हूं कि मधुबन में रहने का चांस आप सबको मिला है। यहाँ हमारे इतने वरिष्ठ भाई बहने हैं जिन्होंने बाबा मम्मा से पालना ली हुई है, जिन्होंने इतने वर्ष यज्ञ में रह करके यज्ञ की इतनी सेवाएं की हैं, उनकी त्याग तपस्या सेवाओं को देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ से। और उनकी पालना ऐसी है, हम सब हमारे जो वरिष्ठ भाई बहने हैं, आप पा रहे होंगे उनकी पालना। हमें दादियों की या मम्मा बाबा की कमी महसूस नहीं होने देते हैं वो, तो ये आप सबका भाग्य है, यहां से ये लेके जाइएगा। तो नए वर्ष की तैयारी अवश्य करें आप सभी। पूरे साल हमने क्या किया, इस पर जरूर एक नजर डाल लें कि क्या क्या विशेष चीजें हमने इस साल 2012 में की हैं, और 2013 में हम क्या क्या करेंगे, कौन कौन सी बातें हम लेकर के जाएंगे 2013 में, और कौन सी चीजों को हम यहीं 2012 के साथ छोड़ देना चाहेंगे, इस पर जरूर सभी विचार कीजिएगा, आत्मचिंतन कीजिएगा। क्योंकि कमी कमजोरियों को लेके तो जाना नहीं चाहेंगे ना, क्योंकि जो चीजें रही हमारे साथ 2012 में कमी कमजोरियों के रूप में, बुराइयों के रूप में, अवगुणों के रूप में, हम उसे यहीं छोड़ें और 2013 के लिए एक ऐसी प्लानिंग करें कि ये 13 सब कुछ तेरा है ना, 13 विशेष, इसीलिए तो कहा जाता है ना कि सब कुछ 13। तो 2013 के लिए विशेष करके एक और बहुत सारी चीजें आप रख सकते हैं, लेकिन 2013 को पूरी तरह 13 करके चलें। प्रभु के नाम, हो सकता है मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए। 2013 का जो वर्ष होगा उसमें मेरा एक एक श्वास, मेरा एक एक संकल्प, मेरा एक एक सेकेंड, मेरी हर चीज तेरे लिए, भगवान के लिए। उसके लिए अभी से तैयारी करो, अपनी सब चीजें जो पुरानी चीजें हैं यहां छोड़ के 13 में हम बहुत सुंदर ढंग से बाबा के साथ प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। तो प्लान सभी कीजिएगा, लेकिन अभी 13 से पहले बाप दादा के आने का समय नजदीक है। तो कैसी चल रही है तैयारी आप सबकी? कैसी चल रही तैयारी? हाँ, आत्माभिमानी बन के बाबा को याद कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और क्या? ज्वालामुखी योग कर रहे हैं, वेरी गुड। और तैयारी का क्या अर्थ है? हम कहते हैं कि हम बाबा से मिलन की तैयारी करें, कैसे करें तैयारी? थोड़ा सामने आ जाइए बहने, जो बहने पीछे खड़ी हैं बैठ जाएंगे, थोड़ा सामने आ जाइए। कैसे करेंगे तैयारी। और जब हम तैयारी कहते हैं कि बाबा से मिलन की तैयारी करनी है, तो तैयारी का क्या अर्थ है? हाँ, बाबा ने जो होमवर्क दिया है उस होमवर्क को हम करें, ये एक हमारी एक तैयारी है। और हाँ, बाबा को प्रत्यक्ष करना, उसके लिए क्या तैयारी करेंगे? ऐसे ही तो बाबा प्रत्यक्ष नहीं होंगे, उल्टा उल्टा नहीं सुनने का, उल्टा उल्टा नहीं बोलेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या तैयारी, मतलब क्या? अव्यक्त स्थिति, बाप समान स्थिति, और ज्वालामुखी, विदेही, व्यर्थ से मुक्त, और हाँ, पांच स्वरूपों का अभ्यास, और चलन और चेहरे से बाबा दिखाई दे, और बहुतों को देना है। बहुत अच्छा, आपका उमंग उत्साह काबिले तारीफ। एक एक लाइन में यदि कहा जाए तो तैयारी का अर्थ है अपने आप को योग युक्त करना। योग ही हमारा श्रृंगार करता है, योग ही हमें मिलन के लिए तैयार करता है, राइट? योग से ही हम सब गुणों से, सब शक्तियों से सजते हैं, और योग अभी से हमारा मिलन बाबा से कराने लगता है। वो तो साकार में बाबा आते हैं, मिलते हैं, ये हम सबका सौभाग्य है, लेकिन वास्तव में जो मिलन है वो मिलन योग के माध्यम से है। यदि आप वहां हॉल में भी बैठे हुए हैं और आपकी अवस्था अच्छी नहीं है, आप योग युक्त नहीं है, तो मिलन का आनंद नहीं आता, बल्कि बगल वाला क्या कर रहा है, मुझे ठीक जगह मिली है या नहीं मिली है, ताक झांक करते रहते हैं, तो थोड़ा हट, मुझे बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना? ये सब चीजें होती है ना। तो योग युक्त होना ये वास्तव में मिलन की तैयारी है। योग ही हमारे विकर्मों को भी विनाश करता है, योग ही परमात्मा से हमें अंग संग की अनुभूति कराता है, योग ही हमें सभी चिंताओं से, तनावों से, सब बातों से मुक्त कर देता है। क्योंकि बाबा हमें ये कहते हैं योग में, जब हम योग युक्त होते हैं तो ये अनुभूति होती है कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हुआ हूं, तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना। और ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग इतनी गहरी है, जिसे ये फीलिंग है उसे कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कल क्या होगा इसका उसे कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह। ऐसी स्थिति योग के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। जिसे अंग संग का अनुभव हो वही ऐसी स्थितियों को प्राप्त कर पाते हैं ना। योगी ही वास्तव में परमात्मा को प्रत्यक्ष करेंगे ना। अंत समय में चारों तरफ योगियों के माध्यम से ही तो परमात्मा दिखाई देंगे। योगी आत्माएं ही न केवल प्रकृति को परिवर्तित करेंगे, बल्कि ग्रह नक्षत्रों की गति और दिशा को भी परिवर्तित करेंगे। इसीलिए गीता में यह महावाक्य आते हैं परमात्मा के कि हे अर्जुन, ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, लेकिन योगी तू आत्मा जैसे मेरे स्वरूप है, जैसा मैं हूं वैसी ही योगी आत्माएं हैं, वो जैसे मेरे समकक्ष बन जाते हैं। अंतकाल में जब बाबा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को छिपाया, वैसे ही अब ऐसा पार्ट बहुत जल्दी आ रहा है जबकि शिव बाबा भी अपने आप को छिपा लेंगे और योगी आत्माएं संसार में प्रत्यक्ष होंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आने वाला जो समय है वो योगियों का समय है। इसलिए अपने आप को हम योग युक्त करें, अपने आप को योगी बनाएं, क्योंकि योगी आत्माएं ही वास्तव में परमात्मा की प्रत्यक्षता के आधार बनेंगे। योगी आत्माएं ही महान आत्माएं हैं, पुण्यात्माएं हैं। और योग के माध्यम से एक बात और विशेष, योग के माध्यम से बाबा ने कहा था, कभी आप सबके ध्यान में ये बात रहे, योग से तो तुम अभी अपने विकर्मों को विनाश कर रहे हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें योग के माध्यम से दूसरों के विकर्मों को भी विनाश करना होगा, दूसरों के भी विकर्मों को विनाश। और ये बात बाबा ने तब कही थी साकार में जब मम्मा बाबा थे, तब एक बहन यज्ञ में थी लेकिन उतना ज्यादा पुण्य का बल, सेवाओं का बल नहीं था उनके पास। जैसे हम कहते हैं कि सामान्य रूप से आलस्य में, अलबेलेपन में अपना जीवन, अपनी दिनचर्या व्यतीत करना। एक बार संदेशी वतन में गई और वतन से शिव बाबा ने मैसेज भेजा कि ये जो बच्ची है इसके पास पुण्य का और सेवाओं का, योग का बल नहीं है, 15 दिन बाद ये शरीर छोड़ने वाली है, इसे कहना नीचे जाके कि 15 दिन है तुम्हारे पास, तुम जितना हो सके सेवाओं से, ज्ञान से, योग से अपने पुण्य का खाता जमा करो। नीचे वो आई, बाबा को ये संदेश सुनाया, बाबा ने बुलाया उन्हें और कहा कि शिव बाबा ने ऐसा ऐसा आपके लिए संदेश दिया है, अब 15 दिन है तुम्हारे पास, तुम्हें जो करना है, जितना अपने पुण्य का खाता जमा करना है तुम कर लो। अब ऐसे समय पे एक जागृति तो आती है ना आत्मा में, लेकिन सारा जीवन यदि हमने ज्ञान योग नहीं किया है तो क्या अंत में होगा? एक प्रश्न हम हमेशा अपने आप से पूछे, हम सोचते हैं कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम अंत में सब कुछ ठीक कर लेंगे, एकदम योग युक्त हो जाएंगे और किसी तरह ध्यान नहीं देंगे, लेकिन क्या ये संभव है? सारे जीवन जिस कार्य को हमने किया है वो चीजें जरूर हमें खींचती हैं, जो जो चीजें हमने जहां जहां छिपा के रखी होंगी, जहां जहां हमारे हिसाब किताब होंगे, खींचेंगे अवश्य हमें। तो ज्ञान योग तो उनसे हो नहीं पाया, लेकिन 15 दिनों तक उन्होंने बहुत यज्ञ की, दिन रात सेवा की। 15वां दिन आ गया और वो बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में, डेथ बेड पे थी, लेकिन शरीर नहीं छोड़ पा रही थी। तो उनके रूम में जो बहनें थीं वो गईं बाबा के पास और कहा कि बाबा उसे बहुत तड़पन हो रही है, वो शरीर नहीं छोड़ पा रही है। तो बाबा और मम्मा दोनों गए और एक तरफ बाबा खड़े हो गए, दूसरी तरफ मम्मा खड़ी हो गईं और दोनों ने बहुत शक्तिशाली दृष्टि दी उस आत्मा को, बहुत पावरफुल योग किया। आधे घंटे के बाद वो आत्मा देह से मुक्त हुई। उस समय बाबा ने यह महावाक्य उच्चारण किया था कि बच्चे अभी तो तुम योग से अपने विकर्मों को विनाश कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा जबकि तुम्हें अन्य आत्माओं के विकर्मों को भी अपने योग से नष्ट करना होगा और उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी होगी। न जाने कितनी आत्माएं पूरे ही वायुमंडल में भटक रही हैं, उन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कौन देगा? कौन देगा? हम ही देंगे ना? क्या हमारे पास इतना योग का बल जमा हुआ है? चेक करना है हमें अपने आप को, और अपने आप को योगी जीवन की ओर ले चलना है, जिसे बाबा कहते हैं कि अब 2 घंटे के 4 घंटे के योगी मत बनो, लेकिन योगी जीवन वाले बनो। और बाबा पिछले सीजन में भी, अभी जैसे आप लोगों ने कहा, हमें ज्वालामुखी योगी बनने की प्रेरणा दे गए हैं। मैं कहीं बाहर गया हुआ था और मैंने कहा ज्वालामुखी योग की चर्चा आज करेंगे, तो एक भाई ने हंसी में कहा कि भैया बाबा ज्वालामुखी योग की बात कह के गए हैं, यहां तो चिंगारी भी नहीं है, कहां ज्वाला और कहां चिंगारी है, छोटी सी तो वो भी नहीं है, क्या किया जाए? तो हम सबको सचमुच विचार करना होगा, क्योंकि योग एक ऐसा विषय है जो व्यक्तिगत हम खुद समझ सकते हैं कि मेरा योग कितना है। अब कोई दूसरा तो आपको कहेगा नहीं, मान लीजिए आप यहां बैठे हुए हैं योग में, आप तो यहां बैठे हैं लेकिन आपका मन, आपकी बुद्धि कहां कहां विचरण कर रही है, ये तो कोई नहीं जान सकता ना। तो आप खुद ही देख सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं, हम 1 घंटे योग करते हैं लेकिन 1 घंटे में कितना देर हमारा योग लगता है। बीच बीच में अपने घर में चले जाते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, अपने और अपने पास्ट में चले जाते हैं, है ना? लाल लाल परम धाम के साथ साथ लाल लाल टमाटर भी दिखाई देने लगते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें ये देखना है योग वास्तव में हमारा कितना है और कैसा है। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, ये अपने आप को ये देखने की सचमुच बहुत आवश्यकता है कि योग में हमारी स्थिति कैसी है। 3 बातों के आधार पे आप चेक कर सकते हैं, ये पैमाने हैं। आज अब तक हमारे पास हर चीज को, पानी को मापना है, पैमाना है, ऊंचाई देखनी है, पैमाना है मापने के लिए, लेकिन योग को कैसे मापें? कैसे हम समझें कि हमारा योग ठीक हो रहा है, पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, कैसे जानें कि हमारा योग कैसा है? तीन आधारों पे आप देख सकते हैं। एक स्पीड, स्पीड अर्थात गति। मैं कितनी जल्दी किसी भी स्वरूप में, किसी भी स्वमान में, किसी भी अवस्था में स्थित हो सकता, स्पीड क्या है मेरी। कई बार हम सोचते हैं कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, लेकिन हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो ही नहीं पाते। हम ये सोचते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन हम उसमें स्थित हो ही नहीं पाते। हम सोचते हैं मैं परम धाम में हूं, लेकिन परम धाम में होते नहीं, कहीं और होते हैं। स्पीड, मैं सोचूं, जिसे बाबा कहते हैं एक सेकेंड में बस निर्देश मिले बाबा का और हम उस स्वरूप में स्थित हो जाएं, क्या मेरी ऐसी अवस्था है? कितना समय लगता है मुझे? मैं चाहूं कि मैं परम धाम में स्थित हो जाऊं, कितनी देर में मैं परम धाम पहुंचती हूं? मैं चाहूं कि मैं अशरीरी हो जाऊं, कितनी देर में मैं अशरीरी बन पाती हूं? मैं चाहूं कि मैं इस स्वमान में स्थित हो जाऊं, कितनी देर में मैं उस स्वमान में स्थित होता हूं? अपने इस समय अवधि को कम करते करते हम एक सेकेंड तक पहुंचना है। इसे कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, जिसे बाबा ने 2-3 साल पहले कहा। एक बहुत सुंदर महावाक्य बाबा का था। बाबा ने कहा, यदि तुम 1 घंटे योग करना चाहो तो पूरे ही 1 घंटे तुम योग में रहो। ऐसा नहीं कि उस 1 घंटे में और भी बहुत सारी चीजें आप कर लो, करने बैठे योग और योग ना हो और बाकी सब चीजें हो जाएं, ऐसा ना हो। तो पहली बात स्पीड, कितनी जल्दी मैं किसी भी स्वरूप में स्थित हो सकती हूं, हो सकता हूं, ये हमें चेक करते जाना है और अपने समय को कम करते जाना है, 1 सेकेंड तक पहुंचना है। अब हर एक अपने आप को चेक कर लें कितना समय लगता है। ड्रिल भी जब आप करते हैं, 5 स्वरूपों के ड्रिल में आप इस प्रैक्टिस को देख सकते हैं। यदि मैं अनादि स्वरूप कहती हूं या कहता हूं, अनादि स्वरूप में स्थित हो पाता हूं, आदि में स्थित हो पाता हूं, मध्य में हो पाता हूं, स्पीड। दूसरी चीज जिसके आधार पे आप अपने आप को, अपने योग को देखें, वो है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन अर्थात समय अवधि, कि मैं कितनी देर तक उस स्वरूप में स्थित हो सकता हूं। एक तो है कि मैं बहुत जल्दी पहुंच भी गया, मैं स्थित हो गया, लेकिन कितनी देर तक मैं स्थित हो सकता हूं? परमधाम तो पहुंच गया मैं 1 सेकेंड में, लेकिन होता यह है कि जितनी तेजी से ऊपर पहुंचते हैं उतनी तेजी से नीचे भी आ जाते हैं। होता है ना ऐसा? हमारे एक भाई बहुत हंसी में कहा करते थे कि आज मेरा योग बहुत अच्छा लगा। उनसे पूछा गया, कैसे योग अच्छा लगा? बोले, आज ना बस मैं इस शरीर से निकल के ऊपर की ओर चला, बस देह से निकल के इस साकार सृष्टि से ऊपर मैं सूक्ष्मतन में पहुंच गया और ऊपर गया, परम धाम में पहुंच गया। परम धाम से भी ऊपर निकल के मैं जा रहा था तो बाबा ने आवाज दी, बच्चे नीचे आओ, कहाँ जा रहे हो, यहाँ बैठा हुआ हूँ। कईयों की स्पीड तो बहुत जबरदस्त होती है, ये फटाफट पहुंच जाते हैं, लेकिन ड्यूरेशन, अवधि, मैं कितनी देर तक किसी भी स्वरूप में, किसी भी स्थिति में स्थित रह सकता हूं? मैं मास्टर हूं ना, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं ना। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं अर्थात क्या? मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकूं, मैं जब चाहूं, जितनी देर चाहूं, उतनी देर तक उसे कहीं भी स्थित कर सकूं। इसे कहेंगे कंट्रोलर, इसे कहेंगे रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। और यदि ऐसा नहीं है तो इसका अर्थ है मन मुझ पे राज्य कर रहा है, मैं मन पे राज्य नहीं कर रहा। राइट है या नहीं है? मन जब चाहता है मुझे कहीं भी ले जाता है, लेकिन अब हमें राजा बनना है और अपने मन को नियंत्रण करके जितनी देर चाहे हमें उस स्वरूप में स्थित करना है। और तीसरी चीज है जिसके आधार पे हमें चेक करना अपने योग को, वो है क्वालिटी। क्वालिटी अर्थात गुणवत्ता। देखो, एक आम आपको 10 रुपए में भी मिल जाता है और वही आम आपको 100 रुपए में भी मिलता है। एक सेब आपको 10 रुपए में मिल जाएगा, वही सेब आपको 100 रुपए में भी मिलता है। डिफरेंस क्या है? क्वालिटी, गुणवत्ता में अंतर। मेरे योग की क्या गुणवत्ता है, अर्थात क्वालिटी क्या है? जिस स्थिति और जिस स्वरूप में मैं स्थित होता हूं, क्या उसको मैं अनुभव कर पाता हूं? उसकी डेप्थ को मैं अनुभव कर पाता हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी योग करें, अपने योग को इन तीनों पैमानों के आधार पर अवश्य चेक करें। स्पीड के आधार पे, क्वालिटी के आधार पे और ड्यूरेशन के आधार पे, और इन्हें बढ़ाते चलें इन सबको, क्योंकि इन्हीं के आधार पे हम वास्तव में जो चाहें वो प्राप्त कर सकेंगे ना। जो योगी होंगे वही सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, वही सिद्धि दाता बन जाएंगे, उन्हें सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, चाहे वो संकल्प की सिद्धि है, चाहे वाणी की सिद्धि है, चाहे वो किसी भी प्रकार की लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करने की सिद्धि है। इसलिए हमें अपने आप को योगी अवश्य बनाना है। तो योग, ज्वालामुखी योग क्यों नहीं हो पा रहा है? आधारों पर हमें ध्यान जरूर देना होगा। बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन कुछ चीजें मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि हम अपने आधार को चेक करें। यदि मेरा योग नहीं लग रहा है, योग में एकाग्रता नहीं हो रही है, हम जरूर चेक करें कि कहां कमी आ रही है। बहुत सारे आधार हो सकते हैं, लेकिन चंद बातें। एक बात जिसे आज भी बाबा ने स्लोगन में कहा, क्या था आज का स्लोगन? मोहब्बत में लवलीन रहें तो मेहनत समाप्त। तो एक बहुत सुंदर बात ये है, हम अपने प्यार को जरूर चेक करें। यदि सच्चे दिल का प्यार है भगवान के साथ, तो योग भी आपका सहज होगा, अनुभव होगा आप सभी को। जहां प्यार है वहां याद स्वतः और सहज हो जाता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि याद करो। लैला मजनू को एक दूसरे को कहने की जरूरत नहीं थी, हीर रांझा को एक दूसरे को कहने की जरूरत नहीं थी। वो जहां भी रहते थे, उन्हें हर चीज में, चाहे वो पेड़ है, चाहे पत्थर है, चाहे पानी है, हर चीज में उन्हें अपने आसिक माशुक जो भी हैं उनके दीदार हुआ करते थे। मीरा को हर जगह श्री कृष्ण दिखाई देते थे। आधार क्या? प्यार। प्यार ना। यदि मेरा सच्चे दिल का प्यार उस एक से है, तो योग सहज है। और यदि योग नहीं है, तो मुझे ये चेक जरूर करना चाहिए, मेरा प्यार कहां है? व्यक्तियों में, वस्तुओं में, वैभवों में, इन सांसारिक अन्य चीजों में मुझे देखना होगा, मेरा प्यार टुकड़े टुकड़े में तो नहीं बटा हुआ है। यदि बाबा से 10% प्यार है, 10% यहां प्यार है, 10% यहां प्यार है, तो आपका मन जरूर वहां जाएगा जहां आपका प्यार है। इसलिए एक दिन अपने आप को बहुत अच्छी तरह बैठकर चेक कर लें कि कहां कहां मेरा मन, कहां कहां मेरी बुद्धि जाती है। जहां जहां जा रहे हैं वहां जरूर जुड़े हुए हैं आप, जुड़े हुए हैं। कहे भले हम देते हैं कि हम नष्टो मोहा हैं, कहने में क्या जाता है, लेकिन वास्तव में अंदर से देखना होगा ना। मनोहर दादी जी बहुत हंसाया करती थी हम लोगों को, कहती थी कि एक माता जी थी, कहती थी कि मुझे किसी से मोह नहीं है, किसी चीज में नहीं, किसी वस्तु में नहीं। और अंत काल में उसे क्या याद आया? गोलगप्पे, कि मुझे गोलगप्पे खाने। और जब उसके मुंह में गोलगप्पे डाले गए, पानी पूरी, तभी उसके प्राण तन से निकले। अब बताओ कि बाबा की याद में हमारे प्राण निकले तन से, या गोल गप्पे खा के, क्या कहेंगे? तो चेकिंग ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात भी। तो हमें ये देखना है प्यार कहाँ है मेरा। एक ही आधार को आज मैं ले रहा हूं, वक्त हमारे पास कम है, अन्य आधारों पे हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन इस एक चीज पर बहुत गहराई से आप सोचें। बाबा के महावाक्य मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। बाबा ने कहा, विचार कीजिएगा इस पे, बाबा ने कहा है, एक के प्यार में डूब जाना ही संपूर्ण ज्ञान और सहज राजयोग है। कितने गहरे महावाक्य हैं बाबा के। और कुछ चीज की आवश्यकता नहीं है, एक के प्यार में डूब जाना ही संपूर्ण ज्ञान है और सहज राजयोग है। क्या हम डूबे रहते हैं लवली एक के प्यार में? कई कई बार मैं सोचता हूं कि क्या भक्तों का प्यार हमारे प्यार से ज्यादा था? वो जैसे एक में बिल्कुल तनलीन रहते थे। मीरा ने अपने महल माड़ियां सब छोड़ दिए, भक्तों के प्यार को देखें, डूबे रहते थे, कुछ नहीं चाहिए, कल क्या होगा उसकी भी कोई चिंता नहीं, वो बैठे हुए हैं ना, है ना? इतना विश्वास, इतना निश्चय, इतना प्यार, क्या हमारा उतना प्यार है उसके साथ, उसके भरोसे पूरा जीवन? बस तू ही तू है मेरे लिए और कोई नहीं है। ऐसे क्या हम डूबे रहते हैं उसके प्यार में। लैला मजनू के लिए कहते हैं कि मजनू को सबने मार के भगा दिया था, एक पहाड़ पे बेचारा जाके रहता था, पीट दिया था लोगों ने कि तू यहां नहीं रहेगा, तू बदनामी कर रहा है, तो एक पहाड़ पे रहता था। अब लैला को तो उसे बहुत प्यार था ना, तो वो एक कटोरे में रोज दूध भेजती थी मजनू के लिए। अब एक मास हो गए, दो मास हो गए, तीन मास हो गए, अब ये रोज ही लैला यहां से कटोरे में भर के दूध भेज रही है, मजनू का उधर से कोई समाचार ही नहीं आ रहा है। अब लैला को लगा भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो वो जो संदेशवाहक था उसको उसने कहा लैला ने कि आज जिस कटोरे में मैं दूध भर के रोज भेजती हूं ना, आज मजनू को कहना कि इसी कटोरे में अपना खून भर के भेजे। तब ये पहुंच गया संदेशवाहक। अब मजनू महोदय ने पी लिया पूरा दूध। अब संदेशवाहक जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि लैला ने कहा है कि जो जिस कटोरे में रोज वो दूध भेजती है ना तुमको, आज इसी कटोरे में तुम्हारा खून मंगाया है। तो मजनू ने क्या कहा होगा? खून। मजनू ने क्या कहा होगा? मजनू ने कहा भाई ऐसा है कि मैं दूध पीने वाला मजनू हूं, खून देने वाला जो मजनू है वो दूसरे पहाड़ पे रहता है। मतलब रोज वो नकली मजनू ही दूध पी जाया करता था, बेचारा जो असली मजनू था उस तक दूध पहुंचता ही नहीं था। हमें अपने आप से पूछना है, हम कौन से मजनू हैं, दूध पीने वाले या खून देने वाले? कौन से मजनू हैं, कौन से मजनू हैं? बाबा हमारी इतनी पालना कर रहे हैं, हम इतना प्यार दे रहे हैं, रोज दूध पिलाते हैं ना आपको, सुबह भी दूध पिलाते हैं, रात को भी दूध पिलाते हैं, इतनी पालना, इतना प्यार, इतना परिश्रम जो भगवान हमारे लिए कर रहे हैं, क्या उसके प्यार में हमें न्यौछावर नहीं कर देना चाहिए अपने आप को? न्यौछावर, जिसको बाबा ने कहा है लव ही लक के लॉक की है। बहुत सुंदर महावाक्य है बाबा के, लव ही लक के लॉक की है, अर्थात यदि तुम्हें भाग्य पाना है तो लव, भगवान को प्यार में, अपनी भावना में ही तो बांधा जा सकता है ना, इसलिए प्यार में डुबाएं। कैसे बढ़ेगा प्यार बाबा से? दो चीजें हैं, एक बाबा से जो जो हमें प्राप्तियां हुई हैं, जो बाबा ने हम पे उपकार किए हैं ना, उनकी लिस्ट बनाइए, याद कीजिए कि क्या क्या दिया है भगवान ने मुझे, यदि बाबा मेरे जीवन में नहीं होते तो मैं कहां होता, कहां होती। यदि बाबा को हम माइनस कर देना अपने जीवन से तो हमारा जीवन कुछ रह जाएगा क्या? सोच, बाबा के मिलन की वैसे भी घड़ियां नजदीक आ रही हैं और साथ ही मिलन कम होता जा रहा है, और बहुत पहले से मैं एक अभ्यास करता रहा हूं, मुझे जो बहुत बहुत प्रिय है, आप भी कीजिएगा। एक विजन मैं अपने सामने रखा करता था और शायद कुछ समय के बाद वो विजन कहीं साकार ना हो जाए। वो विजन ये था कि मैं हमेशा इमर्ज करता था संगम युग के अंतिम दृश्य को, आप भी इमर्ज करें अंतिम दृश्य संगम युग का, बाप दादा हम सब से अंतिम बार मिलने के लिए आए हैं, डायमंड हॉल में हम सब बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा जैसे अपना हाथ हिला करके हम सब से विदा ले रहे हैं कि अच्छा बच्चे विदा, अब फिर से 5000 वर्ष के बाद तुमसे मिलन होगा, हमारा और तुम्हारा साथ इतना ही था, बाबा ने तुम्हें सब कुछ दिया जो भी बाबा के पास था, और अब बाबा तुमसे जैसे विदाई ले रहे हैं। सी, जस्ट इमेजिन करें, बाबा अपना हाथ हिला रहे हैं, हम सब से जैसे विदाई ले रहे हैं कि अब फिर से 5000 वर्ष के बाद हमारी मुलाकात होगी। सोचें इस समय होगा क्या? नहीं, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके आंखों में प्रेम के आंसू होंगे कि बाबा ने हमें कितना कुछ दिया, और बाबा आपके बिना हम भी इस संसार में नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, राइट? और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें बहुत पश्चाताप होगा ना कि बाबा ने इतना कहा हमें, इतना बनाया, इतना कुछ दिया, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए। मेरी शुभकामना कि आप पहली पंक्ति में रहें, और वो समय भी नजदीक ही आएगा ना, होना तो है ना, तो क्यों ना अभी से हम डुबाएं अपने आप को उसके प्यार में कि प्रभु सारे कल्प सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होगा, बस आप नहीं होंगे, इसलिए जो नहीं होगा हमारे साथ, हम अभी उसके साथ का आनंद लें, उसके साथ रहें। और मैं ये भी कहता हूं कि सारे कल्प तो इसी साकार सृष्टि में ही रहना है ना, यही रहना है ना, या कहीं और रहोगे? संगम में ही हमें ज्ञान मिलता है सूक्ष्म वतन का और परम धाम का। इसलिए अब यहां मत रहो, अब रहो ऊपर सूक्ष्म वतन में बाबा के पास और परम धाम में, कि बस बाबा बाप के साथ रहेंगे। मनुष्यों के साथ तो रहते आए हैं, रहेंगे। मनुष्यों से तो बोलते आए हैं, बोलते रहेंगे। मनुष्यों के लिए जीते आए हैं, जीते रहेंगे। अब रहेंगे आपके साथ, ठीक है ना? हो सकता है ऐसा, तो अभी से अपने आप को ऐसे डुबाएंगे। और जो डूबे हुए होंगे उनको योग लगाने की जरूरत नहीं है, बाबा उन्हें याद करेंगे, बाबा उनसे योग लगाएंगे, ठीक है ना? अब मैं आपके गिफ्ट पे आता हूं। 12 जो सौगाते हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को सहज योग युक्त भी करेंगे। लक्ष्य मेरा ये था कि आप सहज योग युक्त हो जाएं और अपने आप को तैयार करें बाबा से मिलन के लिए। तो 12 गिफ्ट हैं, 1 से लेके 12 तक, ठीक है? जैसे घड़ी की सुइयां भी 1 से 12 तक होती है ना, वैसे 1 बजे से लेकर 12 बजे तक आप इन अभ्यासों को कीजिएगा। ये आपके लिए सौगात है। आप इसे ड्रिल के रूप में भी कर सकते हैं जब आप योग में बैठते हैं। तो एक में क्या करेंगे? एक क्या है? एक बाबा है ना। तो जैसे 1 बजे या जैसे ही आप 1 कहें, वैसे ही 1 बाबा के पास पहुंच जाएं। 1 बाबा परम धाम में, शिव बाबा के पास, बाबा की छत्र छाया में, बाबा की किरणों के नीचे। 1 तो 1 बाबा परम धाम में बाबा के पास, ठीक है? 2 मम्मा बाबा, मम्मा बाबा दोनों मेरे सामने हैं, दोनों ही मुझे दृष्टि दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, सकाश दे रहे हैं और अपने समान मुझे बना रहे हैं, अपने गुणों को मेरे अंदर भर रहे हैं। 2 कहते ही, 2 बजे या 2 कहते ही हम अपने सामने अपने मम्मा और बाबा को देखें और उनके समान बनने की प्रेरणा भी लें, उनके गुणों और शक्तियों को स्वयं में भरें। 3 तीसरी गिफ्ट आपके लिए। 3 क्या है? और 3 क्या है? और क्या है? 3 लोक। हाँ, अब योग की बात कर रहे हैं ना। 3 लोक। हाँ, जैसे ही 3 कहें, 3 में हम तीनों लोकों की यात्रा करेंगे। साकार सृष्टि से सूक्ष्मतन में, सूक्ष्मतन से परम धाम में, परम धाम से फिर से सूक्ष्मतन में, फिर से नीचे। और जैसे कहा कि ज्यादा से ज्यादा ऊपर रहें, सूक्ष्मतन और परम धाम में ज्यादा से ज्यादा रहने का अभ्यास करेंगे। उन तीनों आधारों पर स्पीड, क्वालिटी, ड्यूरेशन को बढ़ाते जाना है, ये लक्ष्य रखेंगे। और ये बाबा को हमारी तरफ से बहुत सुंदर गिफ्ट होगी, आपको मधुबन की तरफ से बहुत सुंदर, मधुबन निवासियों की तरफ से बहुत सुंदर गिफ्ट होगी। 4 धाम। हाँ, आप चारों धामों में बैठे हुए हैं, लोग वहां से यात्रा करते रहते हैं, आप लोग यही यात्रा आप लोग चारों धामों में बैठे हुए हैं। और जो धाम में बैठा हुआ है वो कितना खुश नसीब है। कौन कौन से 4 धाम और क्या करना है? शांति स्तंभ में क्या करेंगे? शक्तिशाली स्थिति का अनुभव यहां हिस्ट्री हॉल में। व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हो तो व्यर्थ से मुक्ति के लिए हिस्ट्री हॉल, बाबा के कमरे में। बाप समान बनने की तीव्र प्रेरणा आ रही हो तो बाबा के कमरे में। और कुटिया में क्या करेंगे? बाबा से प्यार से रूहरिहान करेंगे। तो 4 कहते ही चारों धामों की यात्रा करेंगे, ठीक है ना? भले अपनी सेवाएं छोड़ के नहीं, मन से भी आप यात्रा कर सकते हैं। और शाम को भी, सुबह भी, जब भी आपको अवसर मिलता है, चारों धामों की यात्रा। 5वीं गिफ्ट आपके लिए। 5 स्वरूप है ना, पांचों स्वरूपों की बातें बाबा बहुत लंबे समय से कहते आ रहे हैं, तो पांचों स्वरूपों की ड्रिल करेंगे। अनादि, आदि, मध्य, ब्राह्मण और फरिश्ता, ठीक है? ये पांचों हमारे स्वरूप हैं। इन पांचों स्वरूपों की 5 कहते ही हम ड्रिल करेंगे, सुंदर रहेगा। 6वीं गिफ्ट। 6 में क्या करेंगे? भैया गिन रहे हैं 6 में क्या? अवगुण छोड़ेंगे। 6 इजी हो ना आपको याद करना। मैंने आपको कहा कि सहज गिफ्ट सहज होता है ना, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज भी बाबा ने कहा मेहनत मत करो, तो आपको गिफ्ट ऐसे देंगे जो आपको मेहनत ना करनी पड़े। 6 छत्र छाया, छह कहते ही मैं सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया में हूं। भगवान जैसे हजारों भुजाओं की छत्र छाया उन्होंने अपने वैसे मेरे सिर के ऊपर कर दिया है, मैं उनकी छत्र छाया के नीचे सुरक्षित हूं, आनंदित हूं, सेफ हूं और बहुत खुश मिजाज हूं। सात, सात क्या है? बाबा के साथ, ये भी अच्छा है। सात और क्या है? सात गुण, आत्मा के सातों गुण। सात जैसे ही कहें, साथ में हम आत्मा के सातों गुणों का अनुभव करें, न केवल शांति बल्कि आनंद, प्रेम, सुख, जो भी आत्मा के सातों गुण है गहराई से हम इनका अनुभव करेंगे। सात कहते हैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित सातों गुणों का गहन अनुभव। आठवीं गिफ्ट, अष्ट शक्तियां। हाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और आठों शक्तियां जैसे मेरे चारों ओर विद्यमान हैं। अपनी शक्तियों को अनुभव भी करें और अपनी शक्तियों को आदेश भी दें कि अलग अलग स्थानों पे जाके आत्माओं की मदद करें। नौ, नौ अब सतयुग में जाना है, नौ मतलब नई दुनिया में जाना है। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा है। और नौ, नौ रतन और नौ, नौ ग्रह और नौ ग्रह को भी आप ले सकते हैं। नौ ग्रहों को हम सकाश दें, जिसे बाबा कहते हैं कि प्रकृति को भी तुम्हें देना है सकाश, नौ ग्रहों को भी दें। और नौ क्या है बहने बताएं, आपसे जुड़ी हुई चीज है। नौ क्या है? नौ से नष्ट हो मैंने कहा आपसे जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी है, माताओं में मोह ज्यादा है भाइयों में नहीं। ठीक है, नौ से नष्टो मुहा भी ठीक है। नौ क्या है और? राइट, भाई बता रहे हैं, बताइए, बहनों को याद ही नहीं अपने स्वरूपों के। नौ दुर्गा, भाई बता रहे हैं कि नौ दुर्गा भैया है, बहने भूली हुई है, हम नौ दुर्गा भैया अपनी दुर्गा के स्वरूप में जो नौ देवियां हैं उन देवियों के स्वरूप में अपने आप को स्थित करें। मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही वैष्णवी हूँ, मैं ही उमा हूँ, मैं ही काली हूँ, है ना। चलो अपने नौ स्वरूपों में स्थित हो जाएं। फिर तीन गिफ्ट और हैं जिसे मैं संक्षेप में आपको दूंगा। स्थित हो जाएं अपने नौ दुर्गा स्वरूप में। दस, दस में क्या? दस दस इंद्रिय, दस और जब भी दस कहते हैं, एक जगह मैं करा रहा था, मैंने कहा दस तो सामने से आवाज आई बस मैंने कहा ये बात भी बहुत अच्छी है, दस बस, है ना। बहुत देख लिया संसार को, बहुत घूम फिर लिए, अब बस, अब तो अपने मन और बुद्धि को एक में लगाना है, एक से सब कुछ प्राप्त करना है, एक के साथ जीना है, एक के लिए मरना है। तो दस बस, ठीक है। और जब हम दस कहते हैं तो वैसे दस में दशानन भी याद आते हैं, अर्थात रावण। तो रावण को याद नहीं करना है, लेकिन ये चेक करना है कि कहीं मेरे अंदर रावण का कोई अंश तो नहीं रह गया है अब तक। बहुत सूक्ष्मता से दस में अपने अंदर जाकर के चेक करें कि कहीं रावण का कोई अंश शेष तो नहीं है। ग्यारह, ग्यारहवीं गिफ्ट, ग्यारह, एक मैं और एक मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, एक और एक ग्यारह कहते हैं ना, तो मैं और मेरा बाबा, अपने आप को बाबा के सामने देखें और बाबा से अपना श्रृंगार कराएं। जैसे डायमंड हॉल में बाबा बैठे हैं, मैं बाबा के सामने, बाबा मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। बारह, बारह है द्वादश ज्योतिर्लिंगम। हाँ, ठीक है ना। बाबा कहते हैं कि मेरे भक्तों के पास जाओ और मेरे भक्तों को सकाश दो, संदेश दो। तो 12 में हम टोटल 12 ज्योतिर्लिंगमों में पहुंचे अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से और सभी बाबा के भक्तों को शिव संदेश दें, सकाश दें, ताकि हमारा जो कार्य है, बाबा का जो संदेश है, वो जल्दी से जल्दी सभी तक पहुंच पाए। ठीक है ना। तो 12 गिफ्ट पसंद आए। तो आज के इस 12 12 12 में ये 12 गिफ्ट आप सबके लिए हैं। मेरे ख्याल से आप इसे भूलेंगे नहीं, भूलेंगे तो नहीं ना, याद रखेंगे ना गिफ्ट को। ये मधुबन की गिफ्ट है, बाबा की गिफ्ट है, मधुबन निवासियों की गिफ्ट है आप सभी के लिए। इन 12 को याद रखिएगा और बाबा से मिलन की बहुत सुंदर तैयारी कीजिएगा। आपका मिलन बहुत मंगलमय हो, सुखदाई हो, सब वरदानों से आपको भरने वाला हो और नया वर्ष भी आपके लिए बहुत सारे उपहार लेकर के आए, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना है। ओम शांति। हमारे नंदू भाई ने बहुत सुंदर कविता लिखी है 12 12 12 पे, वो भी आपको सुनाएंगे और दादा भी कुछ लिख करके आए हैं, वो भी सुनाएंगे। उन्होंने लिखा है, ये बहुत प्यारी कविता उन्होंने लिखी है हमारे नंदू भाई ने। सभी के साथ संबंध रखो मीठा और प्यारा, पुरानी दुनिया में किसी से लगाव ना हो हमारा। अपने मुख से सदैव बहती रहे ज्ञान की अमृत धारा, सुख शांति के लिए मानव भटक रहा मारा मारा। अंजलि देकर उनको हर बार हमने ही है तारा, एवर रेडी रहो सदा बन करके देह से न्यारा। हर कल्प कल्प युद्ध में रावण ही हमसे हारा, एक बाबा के सिवाय संसार में कोई नहीं हमारा। अब वापस घर जाना है यही लगाओ नारा। ठीक है, अब यही नारा सभी को लगाना है। बहुत सुंदर कविता लिखी है हमारे भाई ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। 12 12 12 पे उनका ये सुंदर कविता।